नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एयर इंडिया ने अपने पायलटों को संशोधित मुआवजा ढांचा स्वीकार करने के लिए और समय दिया है, एक सूत्र ने यह जानकारी दी। हालांकि इस ढांचे का दो पायलट यूनियनों ने विरोध किया है। जिन पायलटों ने अभी तक नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें अधिक वक्त देने का फैसला किया गया है। ऐसा एयर इंडिया द्वारा कई पायलटों के साथ उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के बाद किया गया। सूत्र ने कहा कि एयरलाइन ने नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए इस सप्ताह के अंत तक का समय दिया है। समय सीमा बढ़ाने पर एयर इंडिया की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। इससे पहले नए अनुबंधों को स्वीकार करने की सीमा 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी। समय सीमा बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब संकटग्रस्त गो फर्स्ट ने उड़ान बंद कर दी है और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ऐसे में इसके पायलट कहीं और नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं। प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने राजस्थान में लिथियम का भंडार मिलने पर मंगलवार को खुशी जताते हुए देश में इस महत्वपूर्ण खनिज की शोधन क्षमता स्थापित करने के लिए तेजी से कदम उठाने का आह्वान किया। महिंद्रा ने एक ट्वीट में कहा कि रिफाइनिंग क्षमता के मामले में चीन के पास पहले से बढ़त है, लिहाजा भारत को तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कहा, आखिरकार हमारे पास 21वीं सदी में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का बड़ा भंडार है। ये संकेत है कि भारत का रोमांचक भविष्य है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में रिफाइनिंग ना कि भंडार प्रमुख तत्व है। रिफाइनिंग में चीन के पास बहुत बड़ी बढ़त है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत को खनिज रिफाइनिंग की क्षमता स्थापित करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। राज्य पारेषण इकाइयों को अपने अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर को बाजार में चढ़ाना चाहिए। उद्योग निकाय एसोचैम ने इस संबंध में केंद्र सरकार से उन्हें निर्देश देने का अनुरोध किया है। एसोचैम ने कहा कि एक ऑप्टिकल ग्राउंड वायर दो तरह से काम करता है। बिजली पहुंचाने के अलावा इनका उपयोग दूरसंचार कार्यों के लिए किया जा सकता है। बिजली मंत्री आर के सिंह को लिखे पत्र में उद्योग निकाय ने कहा कि विभिन्न राज्य पारेषण इकाइयों के पास इस समय ऐसी करीब 1,00,000 किलोमीटर लंबी अवसंरचना है। इसमें ऑप्टिकल ग्राउंड वायर की पर्याप्त क्षमता है। पत्र में कहा गया, विभिन्न राज्य पारेषण इकाइयों के पास पहले से मौजूद अतिरिक्त ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के मौद्रीकरण की पर्याप्त संभावनाएं हैं। एसोचैम ने इस संबंध में केंद्र सरकार से राज्य पारेषण इकाइयों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। जीवन बीमा के लिए प्रीमियम राशि बढ़ाना ग्राहकों के लिए बड़ी चिंता की बात है और इसे किफायती बनाए रखना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। मंगलवार को जारी एक सर्वे में ये कहा गया है। बाजार के बारे में शोध करने वाली कंपनी हंसा रिसर्च की रिपोर्ट में जीवन बीमा उत्पाद खरीदने के निर्णय में तीन बड़ी बाधाएं बताई गई हैं। इनमें आर्थिक बाधाएं, उत्पादों का किफायती होना, बीमा उत्पाद खरीदने को लेकर समस्या की आशंका आदि शामिल हैं। सर्वे देश भर के करीब 3,300 जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के विचारों के आधार पर तैयार किया गया है। इन लोगों से पॉलिसी धारक के रूप में उनके अनुभव के बारे में पूछा गया था। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कंपनी के ग्राहकों से संपर्क नहीं होने से लोग बीमा पॉलिसी से दूर रहते हैं। सर्वे में 22% ग्राहकों ने पॉलिसी छोड़ने के संभावित कारण के रूप में कंपनी का संपर्क में नहीं होने का हवाला दिया। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की BSNL 4G सेवाएं देने की तैयारी में है और इन सेवाओं को जल्द से जल्द ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए काम तेजी से जारी है। मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय डॉक लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ भागीदारी पर गौर कर रहा है। अवांछित कॉल के बारे में मंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 4G पर काम जारी है और सरकार जल्द से जल्द सेवाएं शुरू करने को लेकर गंभीर है। मंत्रियों के समूह के 1,00,000 4G उपकरण लगाए जाने को मंजूरी दिए जाने के साथ उन्होंने ये बात कही है। सार्वजनिक क्षेत्र की BSNL स्वदेशी 4G प्रौद्योगिकी लेकर आ रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन दूरसंचार निगम अब ग्राहकों को ये सेवा उपलब्ध कराने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठा रहा है। ऑटोमोबाइल डीलरों के निकाय फाडा ने मंगलवार को कहा कि अनधिकृत मल्टी ब्रांड आउटलेट से दोपहिया वाहनों की बिक्री के चलते वैध डीलरशिप को नुकसान हो रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसने इस चलन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया है। पाडा ने एक बयान में कहा कि मल्टी ब्रांड आउटलेट डीलरों से थोक में अपंजीकृत वाहन ले रहे हैं और बिक्री के बाद सेवा की किसी भी प्रतिबद्धता के बिना रियायती दरों पर ग्राहकों को बेच रहे हैं। निकाय ने कहा कि इससे वैध डीलर प्रभावित हुए हैं और ब्रांड तथा डीलर भागीदारों के प्रति ग्राहकों का भरोसा भी कम हुआ है। कमजोर वैश्विक मांग के बावजूद चीन का निर्यात अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से 8.5% बढ़ा। सीमा शुल्क विभाग ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। इस दौरान निर्यात बढ़कर 295.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले मार्च में निर्यात 14.8% की दर से बढ़ा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में आयात सालाना आधार पर 7.9% घटकर 205.2 अरब डॉलर रह गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।